ওম শান্তি। আজকে শাম কে সত্র মে আপ সভি কা স্বাগত হে। সর্বপ্রথম পরম পিতা পরমাত্মা নিরাকার শিব উনকা আজ কে ইস মঞ্চ পর আহ্বান করতে হুয়ে আপ সভি কা ভি আহ্বান করতে হুয়ে স্বাগত কর রহে হ্যাঁ। আজ কে ইস শাম কে সত্র মে মে আভি মঞ্চ পর আমন্ত্রিত করনা চাহতি হুঁ আদরণীয় রাজযোগিনী কুন্দা বহন জি মহারাষ্ট্র সে চন্দ্রপুর সে, রাজযোগিনী বিকে কুসুম বহন জি উন্নাও, ভ্রাতা প্রফেসর কৈলাশ দাগর জি আগর আমারে বীচ মে হ্যাঁ, আপ ভি কৃপয়া মঞ্চ পর আপনা স্থান গ্রহণ করেন। দিলীপ ভাই আপ ইনকো বীচ মে বিঠায়ে। ডক্টর অলকা অগ্রওয়াল আপ রাইটার হ্যাঁ, আপ ভি কৃপয়া মঞ্চ পর আপনা স্থান গ্রহণ করেঙ্গে। জব তক হমারে অর ভি মঞ্চাসীন সদস্য পধারে, হম সভি পরমাত্ম স্মৃতি মে বৈঠেঙ্গে অর তৎপশ্চাত আজ কা জো হমারা ইয়ে প্যানেল হ্যায় ইসকো হম শুরু করেঙ্গে। ইসকা জো টপিক হ্যায় ও হ্যায় সংস্কৃতি সংস্কার সদ্ভাব কে সাথ সংবাদ করনে কি কলা। তো অভি হম পাঁচ মিনিট কে লিয়ে পরমাত্মা স্মৃতি মে সভি বৈঠেঙ্গে। ওম শান্তি। ওম শান্তি। বহুত হি সুন্দর গীত হম সভি সুন রহে থে কি সচ পুছো তো সারি দুনিয়া আপনা হি পরিবার হে, অর ইয়ে সংস্কৃতি ভি হমারি ভারত কি হি দেন হে, জো কি বিশ্ব কো ভারত নে দি হে। আজ জবকি হম সভি ইস সম্মেলন মে পধারে হ্যায় অর উসি সম্মেলন মে এক ভাগ সংবাদ করনে কি কলা, ক্যোঁকি আজ হম ইয়ে দেখ রহে হ্যায় বর্তমান সময় পর 99% জো ঝগড়ে প্রবলেমস আপস মে সম্বন্ধ টুটনে কা জো কারণ হ্যায় ও কহি না কহি হমারে বোল হ্যায় হমারে শব্দ হ্যায়। কই বার বড়ো কো শিকায়ত রহতি হ্যায় কি বচ্চে ঠিক সে নেহি বাত করতে হ্যায়, কই বার বচ্চো কো শিকায়ত রহতি হ্যায় কি বড়ে ঠিক সে বাত নেহি করতে হ্যায়, অর কই বার আপনে কলিগ সে আপনে আসপাস কে লোগো সে ভি লোগো কো কহিন না কহি বোল মে বড়ি শিকায়ত রহতি হ্যায়। তো ও জো সংবাদ করনে কি জো আপস কি কলা হ্যায় উসকি কমি কে কারণ কই বার হম বহুত অচ্ছি চিজো কো খো দেতে হ্যায়। কই বার ব্যক্তি শব্দ বোল জাতা হ্যায় বাদ মে কহতা হ্যায় মেরা ভাব এসা নেহি থা লেকিন মেনে এসা বোল দিয়া আপ এসা নেহি সমঝনা। তো আজ হম সভি ইয়াহাঁ পর আপ জো বহুত হি অমূল্য রতন ইয়াহাঁ পর পধারে হ্যায় তো উসি কি কেসে হমারা জো সংবাদ হ্যায় আপস কা উসমে হমারি জো সংস্কৃতি হ্যায় জো হমারা সংস্কার হ্যায় জো হমারা সদ্ভাব হ্যায় ও বেসে কেসে খতম হোতা চলা যা রহা হ্যায় অর উসকো কেসে হম পুনঃ বাপিস উস সংস্কৃতি কো লা করকে উস সংবাদ করনে কি কলা কো আপনে জীবন কে অন্দর বড়ায়ে। তো উসি কে বিষয় পর আজ হম চর্চা করনে কে লিয়ে ইয়াহাঁ পর উপস্থিত হুয়ে হ্যায়। তো সর্বপ্রথম মে অভি নিবেদন করুঙ্গি বহনো সে কি হমারে মঞ্চাসীন উনকা স্বাগত ব্যাচ কে দ্বারা অর পুষ্পো কে দ্বারা করে, बहनें आएंगी और दिलीप भाई से भी निवेदन है कि वो फूल देंगे, बहनें बैच के द्वारा स्वागत करेंगी, दिलीप भाई पुष्प के द्वारा स्वागत करेंगे और हम सभी अच्छे से तालियां बजा करके स्वागत करते रहेंगे। इसमें केवल एक का ही स्वागत नहीं है लेकिन आप सबका भी स्वागत है, क्योंकि आप ही हैं जो अपना आराम छोड़ करके कुछ पाने के लिए हॉल तक पहुंचे हैं। इसलिए अपने लिए भी जोरदार एक बार तालियां बजाएं भ्राता प्रोफेसर कैलाश डागर जी, हम जोरदार तालियों से आपका स्वागत कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और सद्भाव हमारे संवाद में हो, ऐसे तो संस्कृत के लिए कहा जाता है कि मान लीजिए अगर दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्तियों में एक के पास एक रोटी है और दूसरे के पास तीन रोटी हैं, तो संस्कृति ये कहती है कि आप उसको एक रोटी दे दीजिए तो दोनों के पास दो दो हो जाएंगी। तो ये हमारे भारत की संस्कृति रही है। उसकी भी एक रोटी छीन करके खा लेना, उसके पास कुछ ना रहने देना, ये कुसंस्कृति है। और यदि उसको आवश्यकता ज्यादा है, उसको भूख ज्यादा लगी है, तो अपनी भी और आधी तोड़ करके उसको दे देना, ये सुसंस्कृति है। तो ये हमारे भारत की सुसंस्कृति रही है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी वाणी में, हमारे भावना में वो सब चीजें खत्म होती चली जा रही हैं। तो उसी को पुनः अपने जीवन के अंदर लाने के लिए और अपने आप को एक उदाहरण बनाकर दूसरे के आगे प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि आज हम सब इस बात को देखते हैं कि व्यक्ति बोलने से नहीं सीखता है, लेकिन जब वो देखता है तो वो सीखता है। हम सभी को इस बात का बहुत अच्छा अनुभव होगा कि घरों में पहले सुबह सुबह दीपक जलता था, आरती होती थी और हम चलते फिरते उन आरती को सुना करते थे। कभी हमें हमारे माता पिता ने ये नहीं कहा कि आप बैठ करके आरती करो या सुनो, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा अनुभव है, हम सबका होगा कि चलते फिरते सुनते सुनते हमें वो गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और जो भी आरतियां घर में दुर्गा जी की हो रही होती थी, तो हम केवल चलते फिरते सुनते सुनते वो हमें याद हो जाया करती थी और धीरे धीरे वो हमारे संस्कारों में आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती चली जा रही हैं। तो आज इसी विषय पर मेरे बीच में हमारे पैनलिस्ट हैं, तो मैं सबसे पहले आदरणीय कुंदा बहन जी, जो कि चंद्रपुर महाराष्ट्र से हमारे बीच में पधारी हैं और आप महाराष्ट्र जोन की कोऑर्डिनेटर हैं कला और संस्कृति प्रभाग की, साथ ही आपने चंद्रपुर क्षेत्र की संचालिका और एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के कला प्रभाग की आप जोन की समन्वयक हैं, कुसुम दीदी जो कि हमारी इस आर्ट एंड कल्चर विंग की चेयरपर्सन रही, पहले जोनल कोऑर्डिनेटर रहे, उसके बाद और भी ऊंचे पद को आपने प्राप्त किया। तो आपने बहुत सेवाएं पूरे भारत के अंदर की और अभी वो नहीं है तो उनकी जगह पर आप बहुत अच्छे से सारा कार्य संभाल रही हैं। तो अभी मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे। आदरणीय,
ओम शांति। मंचा सिंह, आदरणीय भ्राता प्रोफेसर कैलाश डागर जी, कुलपति, मंच पर संचालन करने वाली हमारी रचना बहन, सभा में उपस्थित मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, आज जो सब्जेक्ट है वैसे पे देखा जाए तो बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, परंतु आज इसकी हम देख रहे हैं बहुत कमी महसूस हो रही है। भारतीय संस्कृति, अभी अभी आपने सुना कि सबसे पहले उठकर स्नान करके माता पिता के पैर छूना, मंदिर में जाना या घर में दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, महिलाएं हैं खासकर घर में रंगोली डालना, जो मेहमान आते हैं उन मेहमानों का मान सम्मान करना, अतिथि देवो भव वाली हमारी संस्कृति है। किंतु आज हम देख रहे हैं, जब भी कोई मेहमान आते हैं, आने के बाद उन्हें पानी देने के बाद भाई साहब पहले पूछा जाता है, आप कब जाने वाले हैं। तो ये है आज के संस्कार। हम सभी खास आर्ट एंड कल्चर विंग में पधारे हैं, सुनते आए हैं हम कि आज प्राणियों को पाला जा रहा है, प्राणियों को पाला जा रहा है और घर के माता पिता को बाहर चलाया जा रहा है। क्या यही संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति? तो आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पुनश्च वही भारतीय संस्कृति को जागृत करने का कार्य कर रही है और इसकी शुरुआत हमें अपने से करनी है। मुझे याद आता है पांचवी या छठवी में एक लेसन था जो करीम सेठ टोपी वाला, आप में से भी किसी को याद होगा, अभी पहली लाइन मुझे इतनी याद नहीं, लेकिन वो टोपियां बेचने वाला टोपी बेच रहा था तो उसने एक पेड़ के नीचे अपनी टोपियां जो थी वो रखी, उसकी थैली में पेटियों में मतलब वो टोपी थी टोपियां, तो ऊपर में बंदर थे पेड़ पर, वो सारा ग्रुप आया बंदर और एक एक ने वो जो टोपी है अपने सिर पर पहन ली, क्योंकि जो टोपी बेचने वाला था ना उसके भी सिर पर टोपी थी, है ना। इसलिए बंदरों ने ये देखा इसने अपने सिर पर टोपी डाली है, माना ये यहां डालने की है, तो उन्होंने क्या किया, सभी टोपियां सभी बंदरों ने पहन ली। पहले इन्होंने ट्राई किया उनको टोपी मांगने की, बहुत कोशिश की पर टोपी नहीं मिली, लेकिन फिर इसे एक याद आई बात कि मैंने सर पे पहनी है तो इन्होंने भी पहनी, हो सकता मैं इसे उतार दूं तो वो भी उतार दे, तो उसने अपनी टोपी उतारी और अपने थैले में जो बेचने की थैली थी उसमें डाली, तो सारे बंदरों ने आकर के अपनी अपनी टोपियां उसमें डाल दी। तो अगर बंदर बदल सकता है, सीख सकता है, हम तो फिर इंसान हैं, हम क्यों नहीं ये सीखेंगे? तो हम पहले बदले तो हमारे बच्चे भी, परिवार के सदस्य भी हमें देखकर वो भी अपने आप में ऐसा बदलाव लाएंगे, ऐसा परिवर्तन लाएंगे, ऐसा चेंज लाएंगे। और समय की पुकार है, समय की ये आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय चारों ओर देख रहे आप बहुत सुन ही रहे, वैसे मोबाइल व्हाट्सएप ये वो जो चीजें हैं सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया सभी इतना आगे बढ़ चुका है, और इसको हासिल करने के लिए, इसको पाने के लिए और इसमें खोने के लिए आज मनुष्य अपने परिवार को खो रहे हैं, परिवार के प्यार को खो रहे हैं। और ये हम कैसे प्राप्त करें? तो वास्तव में यही बात है कि हम जब अपना परिवर्तन करते हैं, हम अपने आप में एक सुंदर संस्कार बनाते हैं, तो बच्चे भी हमें देखकर वो सब सीखते हैं। तो ये जो दुनिया में सब कुछ बढ़ गया, इसकी हालत कैसी है? तो कहते हैं कि आदमी पहुंच गया है चांद पर, आदमी पहुंच गया है चांद पर, चांद पर पहुंचकर वो घमंड महसूस करता है और घर में है माता पिता, उनके पांव छूने में शर्म महसूस करता है। तो हमारी संस्कृति क्या थी, जो हमने पहले सुना कि माता पिता को गुड मॉर्निंग करना और उनके पांव छूना। बाहर भी बच्चे जाते हैं, घर से बाहर निकलते थे तो माता पिता को बताकर उनके पांव छूकर जाते थे। किंतु आज हम देख रहे कि कई बार पांव छूना तो दूर रहा, लेकिन घर में बताकर भी नहीं जाते हैं, और जिस टाइम पर बताया गया है वो टाइम पर वापस भी नहीं आते हैं, उसमें भी लेट हो जाते हैं। तो ये जो संस्कार है, इसका बीजारोपण कौन करेंगे? घर के माता पिता सबसे बड़े गुरु हैं। कहते हैं ये माँ का जगराना, मंदिर का कीर्तन नित नित करते आए, फिर भी नहीं अच्छा हुआ ये संस्कार या मन। तो मंदिर के कीर्तन से भी बढ़कर पारिवारिक प्रेम, घर के संस्कार, हम कहते हैं ना किसी किसी के लिए कि भाई इसके रक्त के ही संस्कार ऐसे, इसके माता पिता के ही संस्कार ऐसे हैं। तो ब्लड कनेक्शन के द्वारा भी संस्कार आते हैं, संघ के द्वारा भी संस्कार आते हैं, और घर की जो सभ्यताएं हैं, संस्कार हैं, संस्कृति हैं, इससे भी आते हैं। तो इसीलिए आज हम अगर चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति जो हमारी थी, जीती जागती थी, जैसे हमारे रचना बहन के द्वारा आपने सुना कि अपनी एक रोटी में से भी बांट कर खाना, ये संस्कृति है, ये एक अच्छा संस्कार है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति ये कहती है कि मेरा तो मेरा परंतु तेरा भी मेरा, और ये घर में व्यवहार में हम ऐसे कहते हैं, और मंदिर में जाते हैं तो मूरत के आगे, मूर्ति के आगे, भगवान के आगे क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो देखिए कहने में और करने में कितना फर्क हो गया, करने में और कहने में तो छोड़ो, लेकिन सबसे पहला इसका बीज क्या है? मनुष्य की सोच। तो सोच में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। संस्कार बदलेंगे संसार बदलेगा, लेकिन संस्कार का मूल आधार है स्वचिंतन, स्वदर्शन और स्वपरिवर्तन। हम स्वयं को देखें, कई बारी मेरी क्या गलती हो रही है ये मुझे ही पता नहीं होता है। परिवर्तन तो तब किया जाएगा कि जब हम अपने आप को रियलाइज करेंगे, रियलाइज के लिए कहते रियलाइज। जो परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में हम सबको रियलाइज अर्थात आत्मदर्शन कराया, आत्मा का ज्ञान दिया है, दिव्य बुद्धि दी है, एक अच्छा ज्ञानवान मन दिया है, इसके द्वारा हम अपने को रियलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तब तक हम परिवर्तन भी नहीं कर सकेंगे। एक व्यक्ति को ये पता ही नहीं कि यह मेरी गलती है, जब वो गलती मानने को ही तैयार नहीं, संस्कार मेरा ये गलत है ये समझने को ही तैयार नहीं, तो परिवर्तन कैसे होगा? इसलिए हम सबको यहां से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो ये विचार दिए जाते हैं, एक अच्छी सोच दी जाती है, वो सोच हमारे बोल में लाना, हमारे कर्मों में उतारना, हमारे व्यवहार में आना, इसी से हमारे कर्म अच्छे बनते हैं, संस्कार अच्छे बनते हैं, इसी से संस्कृति अच्छी बनेगी। क्योंकि संस्कार संस्कृति विरुद्ध में आती है विकृति। तो विकृतियां तो उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बढ़ गई है। बच्चे माँ बाप को पलट कर जवाब देते, कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं। एक समय था बड़े बड़े बेटे होते थे तो भी माँ बाप केवल मात्र गंभीर हो जाते थे, आंख दिखाते थे तो भी बच्चे अपने आप में बदलाव लाते थे। हमारा अपना खुद का भी अनुभव है। हमारी आदरणीय कुसुम दीदी जी जो लौकिक में हमारी सिस्टर थी, उनमें और हमारे में लगभग 12 साल का अंतर था। तो हमने देखा कि हमारा जोर से बोलना हुआ या हमारे व्यवहार में अगर उनको ठीक नहीं लगा तो केवल दीदी जी ऐसे देखकर गंभीर हो जाते थे। तो भी हम फील करने लग जाते थे कहीं तो भी हमारी गलती हुई, हम शांत हो जाते थे। तो ये है हमारे संस्कार। और सहयोग की भावना, सद्भावना, भाईचारा, कुटुंब कम की भावनाएं, इसी को ही लाने का प्रयास इस मंच से हो रहा। केवल प्रयास नहीं, लेकिन जो भारत के लिए कहा गया है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ऐसा भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, कहा गया, उसी भारत को जो स्वर्ग बैकुंठ हेवन पैराडाइज कहते हैं, वो कोई ऊपर नहीं है, वो इसी धरा पर था जहां पर देवी देवताएं राज्य करते थे, ऐसे कहा जाता है। पर देवी देवता भी हम अब कहते हैं, जबकि हमारे आगे वो सिमरणीय पूजनीय लायक बने, परंतु वो भी एक इंसान ही थे। परंतु आज सत्य बोलना, अच्छा बोलना, मीठा बोलना, दुश्मन को गले लगाना, लोग कहते हैं ये संभव नहीं, कैसे होगा, बहुत चैलेंजेस आते हैं, ये कैसे होगा, हो नहीं सकेगा। परंतु हो सकता है, क्योंकि अध्यात्म अर्थात स्वयं को जानना, जब हमें ये पता चल जाता है कि हम सब एक हैं, एक पिता की संतान है, विश्व एक है और आकाश एक है, धरती एक है, चांद एक है, सूरज एक है, हम अनेक कैसे हो सकते हैं। हम भी एक के हैं तो एक ही हम सबके संस्कार वास्तव में थे और एक ही सभी की चाहना है। सभी को लगता है मेरा कोई मान दे, मुझे सुख दे, शांति दे, मेरे से अच्छा व्यवहार करे, यही हमारी संस्कृति है। पर इसे हमें भी अपने संस्कार में उतारना है, जो व्यवहार में अपने से चाहता हूं दूसरों का, काश मैं भी मेरा व्यवहार उनके संग ऐसा ही करने लगू तो इस धरा पर स्वर्ग आने में देरी नहीं होगी। और ऐसा ही सुंदर रामराज्य इस धरती पर आने वाला है और इसी की तैयारियां हो रही है, उसके लिए कोई देरी नहीं है। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, जीवन बदलेगा, जीवन परिवर्तन होगा और आने वाला स्वर्ग आकर ही रहेगा। तो हम सभी को भी ऐसे अपने दिव्य संस्कार, सद्भावना वाले संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में जितने भी महान विभूतियां होकर गई हैं, वो किसका प्रमाण है, एक अच्छे भली भांति संस्कारों का ही तो प्रमाण है। उसी के कारण ही तो आज दुनिया से जाकर भी किताबों में, वाणियों में मनुष्यों के जीवित है, जीवित रहेंगे। इसलिए हमारे मराठी में भी कहते हैं, मरावे तरी कीर्ति रूपी उरावे, है ना। तो मरने के बाद भी हमारी कीर्ति समाज में, संसार में बनी रहे, इसी संस्कार को वास्तव में डाला गया है, यही संस्कार है। और इसी संस्कार को हम अपने जीवन में डालेंगे, क्योंकि जब तक श्वास है तब तक हम खुशी दे, शांति दे सभी को, ईश्वरीय रूहानी मानवीय प्रेम दे, वो जिसका अभाव होते जा रहा है। और आज आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो अच्छे संस्कारों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, और यही हमारी वास्तव में संस्कृति है। नहीं तो विकृति के बारे में तो आप सुनते ही हैं। जैसे कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो था वो भगवान के पास गया, तो भगवान को उसने कहा कि प्रभु मुझे आप मैं जो मांगता हूं वो देना। प्रभु ने कहा ठीक है मैं वही आपको दूंगा, किंतु एक शर्त है, मैं आपको जो दूंगा ना उससे दो गुना पड़ोसी को दूंगा। तो क्या हुआ, समझ सकते, सभी को पता होगा कि उसने सोचा क्या मांगू क्या मांगू, क्योंकि मैं जो भी मांगूंगा उसका डबल मेरे पड़ोसी को मिलने वाला है। उसने याद किया, सोचा, उसे याद आया कि पड़ोसी का दरवाजा खोलते बराबर पीछे वाला उसके लग के ही कुआ है। तो इसीलिए उसने भगवान को कहा कि प्रभु ऐसा कीजिए आप मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। तो पड़ोसी की है ना, ये रियलिटी है आज समाज की कि पड़ोसी की दोनों आंखें चली जाएगी और फिर उसका जीवन भी समाप्त होगा। कहां हमारी संस्कृति जीव दान देने की बात करती है। भगवान को भी कहते हैं जीवन के दाता, श्वासों के स्वामी, मुझे तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। तो उसने ये तन दिया, ये मन दिया, बुद्धि दी, ये सारी इंद्रिय दी, इसका अच्छा उपयोग करना, अपने तन का मन का धन का हर इंद्रियों का सदुपयोग करना ही अच्छे संस्कार है, यही अच्छी संस्कृति है। और सदुपयोग से, सद्गुण सत्कर्मों से मनुष्य देवतुल्य बन जाता है। तो इसीलिए आज संस्कार की बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत तो क्या है, जगत गुरु कहलाने वाला है। भारतीय संस्कृति सर्वोच्च संस्कृति है, परंतु आज जहां तहां पाश्चात्य देशों की संस्कृति को बिखरते हुए विकृतियां बढ़ती जा रही है। इन्हें समाप्त करने के लिए मैं यही कहूंगी, राजयोग मेडिटेशन का अवश्य अभ्यास करें, अपने आप को जाके राजयोग में आत्मनिरीक्षण होता है, आत्म परीक्षा होती है, और आप समझ सकते परीक्षा देकर ही तो कोई डिग्रियां लेता है। तो हम भी अपने जीवन में एक अच्छा इंसान देवता बनने की डिग्री यहाँ से अच्छे संस्कारों द्वारा लेंगे। कहने के लिए बहुत कुछ है, किंतु मैं अपनी वाणी को यहीं पर पूर्ण विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदा बहन जी का, क्योंकि ये हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य शिक्षा है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है। अगर हम विश्व को बदलने चलें तो शायद कुछ ना हो पाए, लेकिन स्व को बदलेंगे तो उससे विश्व बदला जा सकता है। बहुत बहुत तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने पैनलिस्ट से थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि ये हमारी पैनल चर्चा है, कोई भाषण नहीं है, तो कृपया आप उसको उसी रूप से लीजिएगा, क्योंकि बात केवल संस्कृति की, संस्कार की और सद्भाव की नहीं हो रही है, बट उसको संवाद में हम कैसे लाएं। क्योंकि जैसे आजकल हम लोग ये देखते हैं कि टीवी में भी जब चर्चाएं होती हैं, फोन पर जब किसी चीज की चर्चा होती है, तो लोग अपने संवाद में अपनी संस्कृति, अपना सद्भाव, सब कुछ भूलते जा रहे हैं। इवन संसद में भी कई बार हम देखते हैं जब नेताओं का आपस में बात होती है तो क्या क्या नहीं चल जाता है शब्दों के कारण से, कई बार तो जूते भी चल जाते हैं। और इसी प्रकार से कई बार हम टीवी में भी ऐसा देखते हैं कि एक ही बात को कितनी
बार उसको किस तरीके से कहना। और आजकल एक समाज के अंदर एक चीज हो गई है कि किसी भी चीज को सुनना, एक्सेप्ट करना वो नहीं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को तुरंत गलत ठहरा देना, दूसरे को नीचा दिखा देना, ना ये सब चीजें हम अपने व्यवहारिक जीवन में देख रहे हैं, तो उससे क्या नुकसान एक बड़े रूप से आ रहे हैं और उसको वो कैसे हमारे मानसिक स्तर पर काम कर रहे हैं और कैसे हम उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो हम आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो अभी हमारे बीच में मैं चाहूंगी अपनी बहनों से, डॉक्टर अलका अग्रवाल जी पहुंचे हैं, तो आपका भी स्वागत बैच और पुष्पों के द्वारा बहनें करें। हमारी कुसुम बहन जी उन्नाव से, आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, आपका भी बैच और फूलों के द्वारा स्वागत हम कर रहे हैं। और इस विषय पर मैं थोड़ा सा जो अभी चल रहा है हमारा, तो मैं डॉक्टर अलका अग्रवाल सिगतिया जी से निवेदन करने जा रही हूँ। आप सुप्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार, व्यंगकार, फिल्मकार एवं स्वतंत्र पत्रकार हैं। आप गोल्ड मेडलिस्ट तथा पीएचडी उपाधि प्राप्त हैं और कई कृतियां आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, बहुत ही अच्छी चर्चित आपकी ये एक कृति है, अदृश्य और मेरी तेरी सबकी प्रमुख है ये सब, और आप आकाशवाणी दूरदर्शन पर आपकी सब प्रसारित होते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको सम्मान प्राप्त हुए हैं, साहित्य के क्षेत्र में आपका उत्कृष्ट योगदान है और आप प्रेमचंद सम्मान एवं अन्य और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। विभिन्न साहित्य और सांस्कृतिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं निदेशक के रूप में आप सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और लगातार दूसरी बार एशिया की 100 प्रमुख महिला रचनाकारों में आप अपना स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। तो ऐसी विशेष अतिथि हमारे बीच में हैं, तालियों के साथ एक बार और जोरदार हम स्वागत करेंगे। और इस विषय पर मैं चाहूंगी कि आप कहें और उसके बाद प्रोफेसर कैलाश डागा जी भी हमारे बीच में हैं, आप भी बहुत ऊंची हस्ती हैं, आप भी अपने विचार इस विषय पर रखेंगे।
जी आवाज आ रही है ना, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और शिव बाबा ने इस बार हमें यहाँ बुलाया है, उसके लिए पहले मैं यहाँ राधा दीदी का और शैलेश दीदी यहाँ बैठी हुई हैं, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि एक डिवाइन लाइट में जब हमें कुछ कहने का मौका मिलता है तो हम अपने आप को फिर से अपना अन्वेषण करते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। और लगातार इस विषय पर मैं ये भी देख रही हूँ कि जब मेरे परिवार की बात होती है, वहाँ कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मेरे पति गलत हैं, या कहीं बच्चे कहाँ हैं और कहाँ हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ से जा रही हूँ, जाऊंगी, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो मेरे भीतर मुझे लगता है कि शायद मैं इनको ठीक कर लूँ, तो एक जो संवाद हमारे बीच में कई बार नहीं होता है वो होगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि संवाद क्यों खत्म हो रहा है। तो देखिए, संवाद इसलिए भी खत्म हो रहा है कि पहले डाइनिंग टेबल पर या जहां भी खाने की जो टेबल हो, जो जगह होती थी, वहां सब लोग एक साथ में बैठते थे और एक दूसरे से चर्चा करके, हालांकि मेरे जो दादाजी थे वो बात नहीं करते थे, वो इशारे करते थे, लेकिन हम सब बच्चे ध्यान देते थे कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। तो हम उनके आसपास खड़े रहते थे कि वो बोलेंगे और ऐसी कोई चीज नहीं रह जाए कि वो मांग रहे हैं और हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स भी बात करते हुए या तो मोबाइल पर या टेलीविजन पर। मैंने कुछ एक अटेंड किया था जिसमें कहते हैं आप एक किशमिश भी अगर खा रहे हैं तो उसको मुंह में घुमा घुमा करके उसका स्वाद लीजिए पहले, फिर उसको खाइए, तो आपको अन्न भी एक अलग आनंद देता है, अमृत बन जाता है। लेकिन आज हम जो अन्न खा रहे हैं, क्या वो अमृत बन पाता है? हम उसके साथ साथ कितनी नकारात्मकता, कितनी नेगेटिविटी अपने भीतर घुसा रहे होते हैं। जब आप देखिए कि आप देखिए आप लोग इतने सकारात्मक होकर भी आप लोगों को इस विषय पर लगातार बात करनी पड़ रही है कि परिवारों के जो मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। और हमारी जो भारतीय संस्कृति, जैसे अभी आपने दीदी ने भी बताया, तो कबीर दास ने भी कहा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब तो कहते इतना दीजिए, इतना मैंने लिखा है कि साईं इतना दीजिए BMW आए, ऑडी भी मुझको मिले, रोल्स रॉयस मेरे गैरेज की शान बढ़ाए, जुहू बीच पे बंगला बने, बिल गेट्स के ऊपर मेरा नाम आ जाए। तो ये सोच हो गई है अभी। तो जब ये सोच, क्योंकि देखिए दरअसल इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से हम गलत हैं, ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता बदल दिया है, वर्ग बन गए हैं। अब क्या होता है कि तीन वर्ग बन गए हैं, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। अब जो मध्यम वर्ग है वो एक उस तरह का है कि वो एक हरिशंकर परसाई जी को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक मध्यम वर्गीय कुत्ता है, तो जब उच्च वर्ग का कुत्ता भौंकता है तो उसके साथ भौंकता है, निम्न वर्ग का कुत्ता भौंकता है तो उसके साथ भौंकता है। तो दरअसल हम अपनी आइडेंटिटी भूलने लगे हैं, और जब हम अपनी आइडेंटिटी भूलेंगे तो हम अपने संस्कारों से दूर जाएंगे। और जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे विषय दिए, संस्कार और संस्कृति और सद्भावना कि संवाद से किस तरह से हम अपने परिवार में लाएं। तो संस्कार ईश्वर का दिया हुआ है हमें परिवार, आप लोगों ने तो इतना बड़ा वैश्विक परिवार बना दिया, लेकिन ईश्वर निर्धारित करते हैं कि ये माँ बाप होंगे, ये दादा दादी होंगे, ये बच्चे होंगे, लेकिन उस परिवार की वैल्यू या उसका हम मूल्य कितना समझ पा रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा एक हमारे सामने समस्या खड़ी हो रही है। मैं अपने यहां जब हम अपनी बात खुद की करते हैं तो मैं कटनी शहर मध्य प्रदेश से हूँ, और जो हमारे दादाजी थे तो वो लड़कियों के लिए कॉलेज खुलवाते थे, लाइब्रेरीज खुलवाते थे, और वो हमेशा एक बात कहते थे कि इस तरह से दो कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले। और मेरी मम्मी हमेशा ये कहा करती थी कि घमंड कभी राजा रानी का भी नहीं टिका है, तो तुम कितने भी बड़े बन जाओ घमंड मत करना। तो ये अच्छा हमारे पापा के भी हमने मतलब वो जो हमारे बड़ों ने शायद उस समय हमें ये समझ में नहीं आता था, हमने वो सुना और उसको ग्रहण किया। आजकल के बच्चे कहते हैं मम्मा बहुत लेक्चर हो गया प्लीज। लेकिन दूसरी तरफ मैं दीदी एक बात और आपको बताऊंगी कि मेरी बच्ची यहाँ सोनीपत में ओपी जिंदल में पढ़ती है, तो उसके उनके एक प्रोफेसर ने कुछ कराया, तो उसने जब बहुत सी बातें बताई तो उनने कहा कि भाई तुम्हें तो बहुत सारी चीजें मालूम है, हाउ डू यू नो ऑल दिस। तो उसने बोला मेरी मम्मा हमें बताती रहती है। तो ये एक बड़ी बात है कि बच्चे कभी कभी सुनते हैं और हमें हमें लगता है कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हम नजरअंदाज करते हैं। और जैसे मैं आपको ये संवाद की कला, जैसे दीदी ने कहा, तो संवाद मान लीजिए बच्चे ने कहा कि मुझे आज मेरी दोस्तों के पास जाना है, और मान लीजिए कि मेरे पति ने या मैंने कहा नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है जाने की, तो वो विद्रोह करेगी। लेकिन मैं ये करती हूँ कि अच्छा अच्छा जाना है, कितने बजे जाना है, कहाँ जाना है, कितनी देर में आओगे। तो जब वो इस तरह से होता है तो मुझे लगता है कि बेटा देखो ये सही नहीं है, तो कई कई बार वो समझ कर खुद मना कर देती है। लेकिन अगर जब मैं पहले खुद उसे मना कर दूंगी तो वो विद्रोही बन जाती है। तो ये एक बहुत बहुत आवश्यक बात है कि आप इस तरह का संवाद करें कि बच्चे को समझें और एकदम से बात को नकारात्मकता से शुरू ना करें, उसको सुने, उसको समझें। तो कई बार ये मेरे और मेरे पति के बीच में थोड़ी सी इस बात को लेकर के बात हो जाती है। मेरी बेटी जो है वो लॉ कर रही है, तो बोलती तुम तो तुरंत हाँ कह देती हो, तो मैंने कहा आप ना करके देख लीजिए, तो वो तुरंत अब वो पापा से नहीं पूछती। तो मैंने कहा नहीं, ये बच्चों को टैकल करने का तरीका आप संवाद स्थापित कीजिए उनके साथ में। तो अच्छा दूसरा मुझे क्या लगता है कि जैसे आप लोग दीदी स्किट कर ही रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्किट कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हम बंद कमरों में कर रहे हैं, वैसे आप लोगों के चैनल्स हैं, मुझे नहीं मालूम है, अभी बहुत ज्यादा जानती नहीं हूँ इसलिए ज्यादा जानना चाहती हूँ, आप लोग के एजुकेशन सेंटर में भी इसलिए मैं मिलना चाहती हूँ जाकर के, क्योंकि मुझे ये लगता है कि संवाद की जो कमी हो रही है ये हमें हमारे जो स्कूल लेवल से हमारे शालेय स्तर से शुरू करनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों में से कितनों के बच्चों के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट डे होता है, हाथ उठाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब ग्रैंड नहीं होता ना तो दिन उनके यहाँ देखिए होता है, तो ग्रैंड पेरेंट डे होता है तो दादा दादी नहीं होते हैं तो नाना नानी जाते, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो ये हो गई है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। जैसे दीदी ने बताया कि मेरी एक फिल्म है अदृश्य जो मैंने लिखी, उसमें एक बच्चा है अकेला है और माँ बाप बिजनेस करते हैं। अब वो बच्चे को लगता है कि वो माँ बाप जो है मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं देते हैं। वो कोई कार्यक्रम बनाते हैं कि चलो आज हम तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर चलेंगे, लेकिन होता क्या है, अचानक उनका कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट आ जाता है और उनको वो कैंसिल करना पड़ता है। तो बच्चे के अंदर ये भावना भरती जाती, तो उसमें एक हमने बचपन में कहानी सुनी थी सुरुचि और सुमति की कहानी, तो ध्रुव की कहानी, ध्रुव तारे की कहानी, कि वो बोले कि पिताजी तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, तो बोले पिता तुम्हें परम पिता। अब देखिए ये परम पिता जब प्यार करते हैं तो ध्रुव तारा बन जाता है। तो अब शायद हम यहाँ आए हमें परम पिता प्यार करेंगे और वो बच्चे भी जो जिन्हें नहीं करते हैं, तो खैर, लेकिन पहले तो आपको परिवार में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसको उसके मन में ये बात घर कर जाती है, फिर उसकी बहन आती है, छोटी बॉर्न होती है, तो वो उसको धक्का दे देता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है, तो उस फिल्म को मैंने इसीलिए लिखा था कि उसमें वैल्यूज हम स्थापित कर रहे हैं तो बच्चा बाद में समझता है। और आज आप लोग गा रहे थे कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, तो कुछ ऐसे गाने जो हैं तो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट हो इस तरह के, और जैसे हम लोग आए हैं तो हम चाहेंगे कि हम इसमें एक एक्टिव रोल अपना निभा सकें कि इस तरह के पॉडकास्ट करें बच्चों को, या जिस तरह से भी अगर कुछ हो सकता है तो हम कुछ करें। और मैं बस एक दो कोटेशंस के साथ में अगर बाद में मौका मिलेगा तो थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, पर अभी और लोग बोलने वाले हैं। तो एक बात मैं कहती हूँ कि लड़िए झगड़िए लेकिन परिवार में आपस में बोलना बंद करिए। तो जब अबोला होता है, अच्छा देखिए जब क्या होता है कि अगर आपस किसी से लड़के के आप तो आपका चेहरा कितना गंदा लगता है, लेकिन आप जब खुश रहते हैं तो आपके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरती सी आ जाती है। और इंग्लिश के कुछ कोटेशन हैं जो मैंने लिखे थे कि जो बहुत जरूरी है, एक सेकेंड, फैमिली मीन्स नो वन गेट्स लेफ्ट बिहाइंड, यानी किसी को भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला छूट रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको वो कहानी बताई थी। और जो एक देश की जो शक्ति होती है वो परिवार होता है, तो परिवार अगर टूटेंगे तो उसकी शक्ति बिखर जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि कहीं ना कहीं एक साजिश है। दीदी आपने कहा कि जो वेस्टर्न कल्चर, लेकिन आप ये देखिए हम तो अपनी कल्चर को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन दूसरे विश्व के लोग हमारी संस्कृति की तरफ आ रहे हैं। अब आप ये लोग बता रहे हैं ना 140 देशों में ब्रह्म कुमारी है ना, तो अब आप ये देखिए कि कितने लोग परेशान हैं, शांति एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन आजकल के बच्चों को, क्या हमारी जनरेशन ने, आप लोगों ने सुना था कभी एंग्जाइटी डिप्रेशन? नहीं सुना था ना। पर आजकल के बच्चों को 13-13-14 साल के बच्चों को दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, साइकेट्रिस्ट का इतना ज्यादा प्रोफेशन फल रहा है फूल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के संवाद बहुत ज्यादा स्थापित करें परिवार में, और डिटॉक्स मोबाइल डिटॉक्स करें कि भाई एक हफ्ते में कम से कम हम 2 घंटे मोबाइल नहीं लेंगे, और उस बीच में एक दूसरे को जाने समझें कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं संवाद को। इस विषय में इतना कुछ बोला जा सकता है, लेकिन एक बात आखिरी में बोलना चाहती हूँ। मेरी एक कहानी है बेटी, उस कहानी को पढ़ करके मुझे किसी ने कहा कि क्या उसमें यह है कि माँ सोच रही है अपनी बेटी के बारे में, बेटी ससुराल जाएगी तो बेटी जब ससुराल जाती है उसको बहुत सारे सपने देती है, एक राजकुमार होगा वो, मतलब तुम्हें ऐसे रखेगा वैसे रखेगा। लेकिन जब वो जाती है ससुराल और उसे वैसा ससुराल नहीं मिलता तो वो दुखी होती है। तो मुझसे उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या लड़कियां इस तरह से सोचती हैं? मैंने कहा आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि शादी के बाद हम जाएंगे एक घर होगा, घर में एक पति अच्छा सा बहुत प्यार करने वाला होगा, कुछ को मिला होगा कुछ को नहीं मिला होगा, जब नहीं मिलता तो सपने टूटते हैं, है ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी इस कहानी को पढ़ के मैं अपनी पत्नी की फीलिंग्स को समझने लग गया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा लिखना सार्थक हुआ। और फिर एक दिन मैंने कहा कि विवेक जी जरा मेरा ये काम कर दीजिए, बोले मैम आज नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले मैं आज अपनी पत्नी को डेट पर लेकर जा रहा हूं और ये आपकी कहानी का असर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सुबह के सेशन में हमने कलाकार का एक बहुत सुंदर डेफिनेशन दीदी ने दिया, कलाकार जो कल को आकार दे, तो हम सब चाहते हैं कल को आकार दे और इसी तरह से हमारे परिवार बचे रहे, संवाद बना रहे और हमारे परिवार टूटे नहीं, जो हमारी शक्ति है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन अलका जी, आपने बहुत प्रैक्टिकल बात को हमारे बीच में रखा, क्योंकि संवाद आपसी वो बहुत सद्भाव का जरूरी है, क्योंकि पहले लोग एक दूसरे से बात करने में खुश हुआ करते थे, आज फोन आ जाता है तो देख के साइड कर देते हैं। कई बार तो एक बहन मुझे बता रही थी कि पता नहीं किसका, कई बार रिलेशन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर उनका फोन आ जाए तो घबराहट होने लगती है कि फोन उठाएं या ना उठाएं। तो मतलब कहीं ना कहीं कितना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है केवल बात करने से। तो बात को, वही बात हमें सुख दे, खुशी दे, तो कैसे हम उस बात को, संवाद को, आपसी को प्रभावशाली बना सकें। तो मैं अभी निवेदन करने जा रही हूँ, भ्राता डॉक्टर कैलाश टागर जी, आप वर्तमान में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के आप कुलपति हैं, रसायन विज्ञान के प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं शोधकर्ता डॉक्टर डागर जी ने बीएससी, एमएससी तथा पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की हैं। आप थोड़ा ताली बजा सकते हैं। उनके पास 32 वर्षों से अधिक अध्यापक एवं शोध का अनुभव है। इससे पूर्व जज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रोफेसर एवं रसायन विभाग विभाग अध्यक्ष के रूप में सेवाएं भी दे चुके हैं। आपके जो मुख्य शोध क्षेत्र हैं पर्यावरण आदि हैं, उनके 71 शोध पत्र और 10 पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुके हैं, और आप 30 शोध कर्ता जो कि उस पढ़ाई को पढ़ते हैं, तो उनको आप पीएचडी की उपाधि प्रदान भी करवा चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर आपने इस प्रकार के शोध अनुसंधान किए हैं, व्याख्यान भी अनेक दिए हैं, साथ ही आप सदस्य, सिंडिकेट सदस्य, छात्र सेवा बोर्ड अध्यक्ष, एनएसएस समन्वयक और मतलब कोऑर्डिनेटर के रूप में आपने जो है अनेक विश्वविद्यालयों में जो है प्रबंधन बोर्ड के सदस्य के रूप में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं, और अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के आजीवन आप सदस्य भी हैं। शिक्षा एवं शोध के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्य में भी आपकी बहुत सक्रिय भूमिका रही है, और अभी भी आप शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में सतत योगदान दे रहे हैं। तो ऐसी विशेष हस्ती आज इस ईश्वरीय कुटुंब के बीच में पधारी है, तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और सत्कार करती हूँ। जब मोहनलाल सुखाड़िया नाम सुना तो मुझे मेरी स्मृतियां जो है ताजा हो गई, क्योंकि 1992 में हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी को, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो कि उदयपुर राजस्थान की है, तो उन्होंने डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि दादी जी को प्रदान की थी, क्योंकि दादी ने ग्लोबल पीस और स्पिरिचुअल और मोरल जो है मानवीय मूल्यों में विकास के लिए बहुत शानदार योगदान दिया था, और उसी के उपलक्ष में ये उपाधि आदरणीय दादी जी को पूरी संस्था की तरफ से मिली थी। तो बहुत ही आज मुझे खुशी हो रही है कि उसी यूनिवर्सिटी के आप हमारे बीच में पधारे हैं, तो मैं एक बार और जोरदार तालियों से आपका स्वागत करना चाहूंगी और आपसे निवेदन करूंगी कि जो हमारा चल रहा है विषय, तो उस पर मैं समझती हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश डाल सकते हैं। भ्राता जी,
आदरणीय रचना बहन जी जो इस कार्यक्रम का बहुत ही उत्तम संयोजन कर रही है, फिर अपनी प्रस्तुति अभी जो रखी है बहन कृंदा बहन ने, अलका जी ने और कुसुम दीदी रखने वाली होगी। यह मंच पर उपस्थित सभी इन बहनों को और सामने उपस्थित सभी बंधु भगिनी सभी को मेरा सामने उपस्थित सभी बंधु भगिनी को भी मेरा सादर नमन। मैं बहुत वर्षों पहले, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर मैं यहां जब आया था ब्रह्मा कुमारी में तो मैं एक पर्यटक के रूप में आबू आया था और उसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी देखा था और उस समय यह हॉल भी देखा इस तरीके ये जो अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन वाला, वह कुछ ही जगह ऐसी व्यवस्था शायद उस दौर में होती थी। तो मुझे बड़ा लगा कि हाँ वाकई में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय एक आधुनिक टेक्नोलॉजी तकनीक का उपयोग करते हुए और बहुत ही शांति सोशल मीडिया पे लगातार जब भी अवसर आते थे तो वो ब्रह्मा कुमारी बहनों का, शिवानी बहन का तो मेरे ख्याल से बहुत वर्ष टाइम तक चलता गया था कि इतना धीमे शब्दों में, इतना मधुर वाणी में और इतने अच्छे शब्दों में जो समझाना, बहुत प्रभावित किया जीवन को। मैं इस मामले में कह सकते हैं कि यह अभी तक अभ्यास करने के बाद भी धीमे बोलना और जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवाज को जो है ले देना, यह सरल नहीं है मेरे लिए। पता नहीं बचपन से थोड़ी सी आवाज तेज ही रही, तो जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मुझे यही कहा गया कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर पढ़ाता था एमएससी की क्लास जोधपुर में जब जनरल नर्स में, और नीचे ऑफिस तक मेरे पढ़ाने की आवाज आ जाती थी, तो मुझे अब उसको मजाक में मेरे जो अशैक्षणिक कर्मचारियों ने जब विदाई समारोह पर कहा कि आज के बाद हमको इस फ्लोर पर आपकी आवाज जो है ऊपर के फ्लोर वाली सुनाई नहीं देगी, क्योंकि थोड़ी सी आवाज तेज रही थी। खैर यह तो सामान्य बात है। अब हम विषय पर जब चर्चा करते हैं तो जो मुझे कहा गया कि रसायन विज्ञान, तो सबसे पहले मैंने रसायन विज्ञान में, और आप लोगों ने भी बहुतों ने पढ़ा होगा या जाना होगा कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। एक ही एटम में दो इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम नंबर का सेट एक सा नहीं होता। हम इसको दूसरी भाषा में या सामान्य भाषा में कहें तो अभी वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, कितने प्राणी इस पृथ्वी पर आकर चले गए, कितने मौजूद हैं अरबों खरबों और कितने आने वाले हैं, क्या किसी दो व्यक्तियों का थंब इंप्रेशन एक सा है? नहीं। तो यह चीज अपने आप में सबसे पहले परिवार में सबको जानना जरूरी है, क्योंकि पूरी संवाद जो विवाद में बदलता है वह उसका कारण है कि वह इस सत्य को नहीं स्वीकार कर पाते कि हम दुनिया में हर व्यक्ति अलग है। सभी व्यक्तियों के थंब जो इंप्रेशन यदि अलग है, इसका मतलब है ईश्वर ने जो रचना की है। और ऐसा नहीं कि जो वर्तमान में चले गए अरबों खरबों लोग उनसे भी यदि मिला लें तो कितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ईश्वर ने रचा है कि हम उसका कल्पना नहीं कर सकते। तो यह स्वीकार यदि पहला विषय हो जाता है कि हम सभी को ईश्वर ने अलग अलग गुण दिए हैं, अवगुण दिए हैं, जो भी रचना की है, एक जैसा व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता, कुछ तो अंतर रहेगा ही रहेगा। यदि यह मन में अच्छी तरह सब परिवार के सदस्यों के साथ बता जम जाए, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है वह उसका चित्र बनाता है। चित्र बना के अपना लक्ष्य, उसके मन में अच्छा एक इच्छा थी कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का चित्र बनाओ, श्रेष्ठ बालक का, उसने बना लिया। बहुत वर्षों बाद वह सेवानिवृत्ति हो गई उसका, इसे जो है फिर बुढ़ापे में उसकी इच्छा हुई, कि मैंने इतने जीवन में चित्र बनाए और तरह तरह के, और मैंने बहुत वर्षों पहले एक अच्छे व्यक्ति का भी चित्र बनाया था, क्यों नहीं मैं अब एक निकृष्ट व्यक्ति का चित्र बनाऊं। तो वह निकृष्ट व्यक्ति मिल कह सकते हैं, जेलों में मिलेंगे, तो वह अपराधियों की उन लिस्टों को, सूचियों को अलग अलग जेलों में देखता है और एक जगह उसे लगता है कि इस अपराधी का व्रत जो है, जीवन व्रत, वह सबसे निकृष्ट कामों वाला है। ऐसे इससे घटिया व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, इससे दुष्ट व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। तो वह उसका अनुमति चाहता है जेलर से, और जेलर जाके उसको कहता है कि आपका चित्र एक चित्रकार बनाना चाहते हैं। वो उनको बताते नहीं कि किस दृष्टि से, परंतु उनके मन में इच्छा है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उसने कहा मुझे कहा दिखी तुम। फिर वो जब चित्रकार उसका चित्र बनाता है तो पूरा चित्र होने के बाद में उसको मुस्कुराहट आती है बनने वाले। तो चित्रकार पूछता है क्या हुआ आपको मुस्कुराहट कैसे? मैंने तो आपका चित्र इसलिए बनाया है कि आप दुनिया के सबसे निकृष्ट व्यक्ति हो, सबसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले। तो उन्होंने कहा कि आपको तो याद नहीं, पर मुझे याद है कि 40 वर्ष पहले आपने मेरा चित्र इसलिए बनाया था कि मैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, आज आप मुझे। तो असर सिर्फ संगत का हुआ, मतलब बचपन से लेके बड़े तक यदि परिवार इतना ध्यान देना शुरू करे कि एक तो उनको यह सत्य को स्वीकार करे कि हम सब पृथक हैं, तो हमारे में कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा, तो संवाद सरल हो जाएगा। और दूसरा, संगत उसकी कहां कहां कैसे कैसे हो रही है, यह चीज बहुत ही परिवर्तन कर देगी। ये तो प्रायोगिक रूप से मैंने अपने परिवार या अपने मित्रों के परिवार या बचपन में देखा भी है कि सकारात्मकता का अपना, मैं जैसे जोधपुर से आता हूं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, यह जो आज का विषय है, तो हमारे तो विश्व गुरु और किस संस्कारों में तो हम कितने आगे थे। आज भी वर्तमान में वह देश जो है कि कोई भी व्यक्ति उस तरह के संस्कार दर्शा नहीं सकता, ऐसे संस्कार थे। कुछ छोटे मोटे उदाहरण यदि हमको याद है बचपन के, तो महाराजा शिवी का उदाहरण, महाराजा हरिश्चंद्र का उदाहरण, क्या कितने धर्मपरायण और कर्तव्यपरायण थे शिवी के पास। क्योंकि हमारा देश जो है, हर देश की एक पहचान है विश्व में, हर व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसको ईश्वर ने कुछ विशेष कार्य के लिए भेजा है, हर एक का अपना कार्य। तो वैसे ही राष्ट्र का भी अपना एक योगदान, पूरे विश्व में किसी देश को जो है वह युद्ध कला पसंद है, किसी को राजनीति पसंद है, किसी को और सौंदर्य कला या ये कलाकारी जो है वह अलग अलग तरह की पसंद है। पर हमारे राष्ट्र का जो विश्व में ईश्वर ने दिया है वह सिर्फ इसीलिए दिया है कि हम पूरे विश्व को वह सभी ज्ञान देंगे विश्व गुरु के रूप में। विश्व गुरु हमने अपने को नहीं कहा, दुनिया ने हमको विश्व गुरु माना है। क्यों? कि एक ही ऐसा राष्ट्र है जो ये कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। तो यह कहने वाला कहीं पर मिलता है। हम तो आरती में भी विश्व का कल्याण हो, सब प्राणियों में सद्भावना हो, कितना रूट जड़ों तक गहरा जा चुका है। तो ऐसा सकारात्मकता पूरे दुनिया में शायद होंगे, वो बहुत सी अच्छी चीजें होगी, परंतु जिस लेवल तक भारत के अंदर हुए, तो इसलिए भारत की पहचान पूरे विश्व में धर्म, आध्यात्म, योग, इनके लिए ही मानी जा सकती है। तो यह भारत की पहचान को हम कैसे मैं बता रहा था कि मारवाड़ी में हमारे यहाँ घरों में जो कहावत राजस्थानी में चलती थी, कहीं पर नकारात्मकता है ही नहीं हमारे पूरे संस्कृति में, संस्कारों में। हम यदि जो है बाहर निकलने के लिए और कह दिया, पीछे से किसी ने पूछा कि कटे जा रही है, तो टोकते थे कि नहीं नहीं नहीं, कटना शब्द हमारे संस्कृति में नहीं है, हिद जा रही हो ये बोलो। यदि मान लो घर में आटा थोड़ा कम हो गया, तो ये नहीं कहते कि अब आटा कम हो रहा है, आटा लेके भाई आटा भत्तो भत्तो है, मतलब बत्ता बत्ता मतलब ज्यादा ज्यादा है, कहने में वो उल्टा लग रहा है, परंतु उससे समझ जाता था अगला कि अब आटा हो रहा है। इसी तरीके से दुकानदार अपनी जब दुकान बंद करता है शाम को, तो वो ये नहीं कहता कि दुकान बंद कर रहा हूं, कि दुकान को बड़ी कर रहा हूं। तो मतलब आप ढूंढते जाएंगे, ये तो कुछ उदाहरण है, पूरी संस्कृति हमारी सकारात्मक से भरी है। हमारे संस्कृति में या संस्कारों में कहीं नकारात्मकता नाम की चीज है ही नहीं। और इतनी सकारात्मक, और जितने संस्कृत के श्लोक, जितने हमारे ग्रंथ, और यही तो एक देश है जो बहुरंगी अनेकता में एकता, कितने प्रांत, कितनी भाषाएं, कितने लोग, पूरे विश्व में इतना विविधता वाला देश कहीं नहीं है। तो ऐसा विविधता वाला देश ही आज के इस समय काल में यह जो है जानकारी या सबको विश्व गुरु के रूप में शिक्षा दे सकता है। और बाकी तो जो अभी बहनों ने, पूर्व बहनों ने बताया कि प्रकृति, विकृति, संस्कृति, अपना लेना तो प्रकृति हो गई, दूसरे का छीन लेना तो विकृति हो गई, और अपना भी आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को देना तो ये संस्कृति हो गई। इसी तरीके से बहुत सी अलग अलग घटनाओं के साथ, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, तो मैं उस सीमाओं को ध्यान रखते हुए यह जो है कि विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती, यह बचपन से इन गीतों को सारे जहां से, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हम ही इस पूरे विश्व को वापस दिशा देने वाले होंगे। और शुरू होगा परिवार से। अभी आपने कहा कि विश्व हमारी चीजें अपना रहा है और हम भूलते घर, तो इसमें भी एक बार किसी किस्सा याद आता है कि एक हमारा बड़े व्यक्ति जो है भारत के, वो गए तो अलग अलग उनकी विचारों का अध्ययन करने के लिए गए थे, तो देखा कि एक जगह आमंत्रण आया उनको अतिथि के रूप में, तो जैसे अपने लॉयंस क्लब और होते हैं तो उनका नेकेड क्लब। अब वहां पर पहली शर्त है कि बिना कपड़ों के रहना, ये उन्होंने पढ़ा अध्ययन कि इस यहां पर जाएंगे तो ऐसा, जैसे आज मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें आया हूं तो मुझे पहले से ही पता है कि इतने शांत चित्त, इतने असरदार और मीठे शब्दों में, और इतना जबरदस्त कार्य यह राष्ट्र की उन्नति में, विश्व में कर रहे हैं। 140 वैसे ही उस व्यक्ति के भी मन में था कि अब इनका तो जो क्लब है उसका अध्ययन किया तो वहां वैसा है, तो उसने उनकी, जब उनके बीच में जाना है तो उनके जैसा रहना है, वो नेकेड के रूप में। उधर सुनने वालों को ये था कि ये व्यक्ति भारत से आ रहा है और वहां पर ये व्यवस्था ऐसी है, सब कुछ है, तो उन्होंने उस दिन कपड़े पहन लिए। तो लगभग हमारी स्थिति वर्तमान में कुछ हद तक ऐसी हुई है कि जहां हम विश्व की बुराइयों को अपना रहे हैं और विश्व हमारी अच्छाइयों को अपना रहा है, पर वह समय दूर नहीं है। पिछले कुछ 10-15-20 सालों में ऐसे नायक भी हमको भारत में मिल रहे हैं कि जो इन सब चीजों को बढ़ा रहे हैं। अब गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी परिवार, उधर और अनेकों जो हैं, मैं नाम इसलिए ले तो आपको सबको पता है, 5-7 तो ऐसे ऐसे नाम है कि दक्षिण में श्री श्री या उधर रामदेव जी या उधर सभी प्रयास में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कितने संगठन ऐसे अच्छे कार्यों को लगे हैं। तो ये एक जो माहौल बन रहा है, और ये माहौल, आध्यात्मिक माहौल, मुझे लगता है कि हमारे आज के जो नेतृत्व है, वह नेतृत्व की जो एक अमृत काल हमको इस बता रखा है स्वतंत्रता के बाद, इस समय। और यदि शिक्षा में मैं सिर्फ समापन की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि मैं उदयपुर विश्वविद्यालय किया, तो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो इन गुणों को हमारे में शामिल कर सकती थी, पूरा उसके पहले 50-60-70 साल हमने क्या पढ़ा। यदि किसी भी बच्चे को पूछ लो तो वो 10 महापुरुषों के नाम बताना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। हमको अकबर याद रहेगा, हमको बाबर याद रहेगा, हमको उमाई, क्योंकि उनकी ज्यादा चीजें पढ़ी। सवाल यह नहीं है कि वो किस चीज के, वो आक्रांता थे, उनके अवगुण थे, जो अपने पिता को पानी नहीं दे सका, जो अपने भाइयों को मरण, तो ऐसे किताबों में उनके लिए ज्यादा प्रश्न, दूसरे के लिए। तो वह शिक्षा नीति बदलने का काम भी प्रारंभ हो गया है। 1835 में मैकाले ने एक शिक्षा नीति दी थी, और उस शिक्षा नीति के कारण आज हम परेशान हैं। आज हमारा परिवार भी परेशान है, हमारा समाज भी परेशान है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों में जो थी उनमें मैकाले, उनको शासन करना था इस देश में, बड़ी कुटिलता से और 30-35 साल तक मेहनत करके उन्होंने वो नीति बनाई थी, और उस नीति को अब धीमे धीमे, सभी आजादी के बाद धीमा प्रयास हुआ, पर अब तेज गति से चल रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रयास स्व को जगाएगा। अभी बहनों ने कहा था कि जब स्व जग जाएगा हमारा कि हम कितने स्वाभिमानी, कैसे थे हमारे महापुरुषों की घटनाएं, बस इतना सा ही तो शुरू कर दें, कुछ सत्य परिवार में बताना शुरू करें, कुछ संवाद करना शुरू, और कुछ महापुरुषों की घटनाएं, जितने अच्छी अच्छी हमारी इतिहास की घटनाएं, सकारात्मक चीजें करते जाएं, जब हम बड़ी लाइन खींचेंगे तो वो नकारात्मकता वाली छोटी लाइन चली जाएगी। तो इस सकारात्मकता और संवाद के द्वारा हम अपने इस अभी की जो समस्याएं या परेशानियां जो दिख रही है इसको दूर कर पाएंगे। और मुझे तो ऐसा बहुत लग रहा है कि इतने सारे मिलकर संगठन जब पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं तो पूरा विश्व वापस पुराना गौरव प्राप्त करेगा। और निश्चित रूप से यह मुझे अपनी आंखों से हम लोग देखेंगे 2047 तक, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कि जो जो हम कल्पना कर रहे हैं सकारात्मकता के साथ, वो सब चीजें हमको अपने सामने मिलेगी। इस आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और जो मुझे आमंत्रित किया, मुझे बहुत रुचि थी, इच्छा थी, क्योंकि यह तो हर जगह है, जो तो मैं ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी के उनमें नहीं देखा, सब पढ़ता हूं, साहित्य पढ़ने का शौक है, शिक्षा जगत में सब। तो आज सोचा नहीं था कि इस मंच पर, जब कभी पर्यटक के रूप में आया था और आज यहाँ इस मंच पर भी मुझे भी कभी अवसर मिलेगा, ईश्वर की कोई कृपा होगी, पूर्व जन्म के कर्म होंगे कि आप लोगों के मध्य मुझे यह सौभाग्य मिला, सभी का बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का, बहुत सुंदर आपने तीन बातें हमारे बीच में कही कि एक तो हमें स्वीकार करना होगा कि हम सब डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, दूसरी चीज बालक और मालिकपन का बड़ा बैलेंस रख के तब हम संवाद में आए, और तीसरा कि हम पॉजिटिविटी सकारात्मकता को जितना अपनाएंगे उतना हमारी संवाद की जो कला है वो बहुत अच्छी होती चली जाएगी। भ्राता जी ने बताया कि कभी इनके परिवार में संवाद में विवाद नहीं हुआ, तो ये बहुत बढ़िया बात है। और मेरे को याद आ रहा था कि हमारी दादी जानकी जी इस बात को कहते थे कि अगर मान लीजिए संवाद में विवाद हो जाए तो क्या करेंगे, बताइए, आप में से कोई बताइए एक लाइन में, क्षमा याचना, अगर विवाद हो जाए तो क्षमा याचना करेंगे, हाँ जी, फुल स्टॉप लगा देंगे, और कोई बताए, झुक जाएंगे, जी राइट। दादी कहती थी हार मानी माना हार मनी हो जाएगी, अगर कभी संवाद में परिवार में विवाद हो जाए तो उस समय हार मान लीजिए, तो हार मानी माना हार मनी, ठीक है। तो और इसीलिए कभी जी जी तभी दादी ने बोला ना, हारमनी हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा आपस में। तो उसी ये छोटी छोटी शिक्षाएं जीवन के अंदर बहुत बड़ा काम कर जाती हैं। तो विशेष हमारी दादी की शिक्षाएं रही हैं, और जैसा कि आप दोनों ने बहुत ही सुंदर अपना वक्तव्य रखा, मैं आपको बताना चाहूंगी ब्रह्मा कुमारी की तरफ से 24 आवर्स के हमारे चैनल चलते हैं, पॉडकास्ट चलते हैं, अगर आप देखेंगे तो समाज के प्रति इतने बड़े और विस्तृत रूप से ये कार्य चल रहा है कि, और आज भी जो प्रोग्राम आज ये हो रहा है हमारे बीच में, और आपने जो भी बातें कही हैं मैं समझती हूँ कि वो ऑनलाइन भी जा रहा है और इसको वैसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये रहेगा, जिसको लोग सुन करके जरूर अपने जीवन के अंदर एक अच्छा परिवर्तन लाएंगे। तो इस प्रयास में हम सदा ही 365 डेज लगे हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी इसका ये बहुत अथक प्रयास चल रहा है। मैं आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत पुनः दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय कुसुम दीदी जी, जो कि आप उन्नाव, हमारा वहां पर एक रिट्रीट सेंटर है हरदोई यूपी में, वहां से आप पधारे हैं और पिछले लगभग 30 वर्षों से आप अपने जीवन को समर्पित रूप से समाज की सेवा में दिया है, आपने अनेक सेवाएं की हैं और अभी आप रिट्रीट सेंटर की उन्नाव की कुशल संचालिका हैं। समय को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अभी आगे का सेशन भी बहुत अच्छा आपका होने वाला है, तो मैं अभी
कुसुम बहन जी से निवेदन कर रही हूँ कि आज के सिर्फ इस विषय पर कुछ संकल्प आप हमें दिलाएं कमेंट्री के रूप से, तो तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है।
ओम शांति। तो अभी हम अपने भ्राता जी को सुन रहे थे और सुनते ही सुनते मुझे एक कहानी याद आ रही थी। वास्तव में देखा जाए, जैसे भाई साहब ने कहा, इस संग का प्रभाव मनुष्य के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। तो एक बार की बात है, बताते हैं कि भौरा और गुबरीला की आपस में मित्रता हो गई। तो एक दिन भौरे के मन में आया कि ये मेरा मित्र रोज गोबर की गोली खाता है, आज क्यों न इसको हम ले आए और पराग कणों का रसों का रस पान कराएं। तो उन्होंने उसे आमंत्रित किया कि आप आइए और आपको हम बहुत सुंदर पुष्पों के ऊपर बिठाएंगे, सुंदर आप खुशबू का आनंद लेंगे। आई हुई तो उस पुष्प को गंगा जी में प्रवाहित किया गया। इसीलिए कहा गया कि संगत के गुण अनेक हैं, चढ़े महेश के शीश, जाओ मित्र हमें जाने दो अब गंगा के बीच। वो वापस कर रहे थे कि आ जाओ। तो ऐसे ही आप सब लोग इतने सुंदर स्थान पर आए हुए, हमारी दीदियों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे मेहमानों ने अपने अनुभवों को बहुत सुंदर तरीके से आप सबके बीच में साझा किया और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोगों ने उन बातों को सुनकर के जरूर अपने मानस पटल पर कुछ छवि बनाई होगी, कुछ अपना चित्रण बनाया होगा जीवन दर्शन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो आप यहाँ आए हैं कुछ विशेष लेकर के जाए, जैसे हम कहीं जाते हैं कुछ लेकर के लेके जाते भी, वहां से कुछ लेके आते भी हैं। तो आप लाए भी हैं, लेकिन जो लाए वो यही छोड़ दो और यहाँ ऐसी सुंदर सुंदर बातों को लेकर के जाएं जिससे आपका परिवार, आपका जीवन और आपका परिवार ही नहीं बल्कि विश्व एक सुंदर खिली हुई बगिया की तरह बने। तो आज के दिन हम कुछ उस पिता परमात्मा की याद में बैठ के उस विश्व रचयिता नव निर्माण करने वाले जो परम पिता परमात्मा एक स्वर्णिम दुनिया की स्थापना करे इसमें हम आप सब मददगार बने। तो कुछ संकल्प हम आप सब अभी लेंगे और साथ साथ जैसे कोई व्रत रखते हैं तो व्रत को हम आप बार बार रिवाइज करते हैं। कोई व्रत के दिन अगर कुछ खिलाना चाहता है तो भी कहेंगे नहीं भाई आज हम नहीं ले सकते, आज मेरा व्रत है। तो ऐसे जीवन के लिए प्रतिदिन के लिए कुछ हमें व्रत लेने, जैसे हमारी दादियां अपना अनुभव सुनाती थी कि शुरू शुरू में हम लोग अपने संस्कारों को बदलने के लिए साप्ताहिक व्रत लेते थे, जैसे एक सप्ताह मुझे शांत रहना, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, ऊपर नीचे हो जाए, समस्याएं आ जाए, क्योंकि ये मेरा परीक्षा काल का समय, ये मेरा पेपर लेने वाला आया। तो ऐसे ही हम आप सब उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें तो सचमुच में आप जो हम आप कल्पना कर रहे हैं कि ये भारत बहुत सुंदर था, सोने की चिड़िया थी, यहाँ सब देव देवियां रहती थी, तो कोई दूसरे नहीं है, हम ही आप सब थे और हम आप सबको पुनः बनना है। तो अभी आप सब लोग 2 मिनट के लिए रेड लाइट करेंगे और उस पिता परमात्मा की याद में कुछ आज विशेष संकल्प लेंगे और उन संकल्पों को बार बार जो व्रत लेंगे बार बार उसको घर जाने पर भी रिवाइज करेंगे। तो सभी अनुभव करें कि आज की इस प्रयोगशाला से हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, जो मुझ आत्मा का धर्म शांति है, सदा मुझे उस व्रत का पालन करना है, शांत रहना है, और और सभी के जीवन को भी शांत बनाना है। सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करना है। क्योंकि हम सब पिता परमात्मा की संतान है, थोड़े समय के लिए इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अभिनय करने आए हैं। इसलिए सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना है। अपने अंदर छुपे हुए दिव्य गुणों से प्रेम, कुछ भी हो जाए अपनी विरासत को मुझे जाने नहीं देना है, सदा संभाल कर रखना है। यही मूल्य हमारी शोभा है, हमारे गहने हैं, हमारी सुंदरता है। इसलिए सदा दिव्य गुणों का विकास करना है। इस सृष्टि को भी एकदम प्रेममय बनाना है। संकल्प ले कि यहां से घर पहुंचने पर अपने परिवार के साथ हम प्रेम का व्यवहार करेंगे। बच्चों को भी प्रेम का पाठ पक्का कराएंगे। जहां शांति और प्रेम है वहां ही सुखमय संसार, सुखमय समाज है। इनको सदा अपने साथ रखकर सदा ही देने का काम करना है। क्योंकि हम दाता की संतान हैं, मुझे भी देने का काम करना है। सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रख, श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी सभी कमियों को यहाँ पर ही उस पिता परमात्मा की याद में समाप्त करना है। आगे सुंदर जीवन जीने की कला अपने में भरनी है। सबके साथ मीठा व्यवहार, मीठी दृष्टि, मीठी वाणी और मीठे कर्म करने। ऐसा ये सुंदर व्रत लेकर अपने जीवन को और सर्व के जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुसुम बहन जी का। अभी मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि हमारे आए हुए मेहमानों को ईश्वरीय प्रसाद के द्वारा सम्मानित किया जाए। बहनें आएंगी और आदरणीय कुसुम बहन जी आप ईश्वरीय टोली प्रसाद जो है ईश्वरीय सौगात पापा के घर से जो है वह आपको समर्पित करेंगे। शीतल बहन जी आ रहे हमारे बीच में। बहुत 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 धन्यवाद। और अब ये आपका घर है, आप आते रहिए क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम कोई गेस्ट बन के आता है लेकिन सेकंड टाइम वो होस्ट हो जाता है। वैसे तो सेकंड डे ही हो जाता है लेकिन फिर भी हमारी आपसे नम्र निवेदन रहेगा कि आप अवश्य आते रहें और इस ईश्वरीय कार्य में आप अपना सहयोग अवश्य दें ताकि आपके सहयोग से इस कार्य में और पंख लग सके। धन्यवाद पुनः।
मैं यहाँ एक बच्ची है मेहर जो वो आई है, मैं इसलिए ये दीदी धृष्टता कर रही हूँ क्योंकि पारिवारिक मूल्य मैंने उनके बीच में देखे हैं। तो ये बच्ची और माँ ये दो जिस तरह से वो एक दूसरे को वो करते हैं तो बहुत अच्छा लगा। और बस मैं ये कहती हूँ कि इनको देखकर मैं कहती हूँ कि परिवार वो चाबी है जो जीवन में खुशियों का दरवाजा खोलती है। इसलिए जरूरी है कि परिवार और रिश्तों को संभाल कर रखा जाए। परिवार को भावनाओं की खाद, अपनेपन की धूप, स्नेह के पानी और कभी कभी त्याग और समझौतों की छाओं के तले सहेजते रहे। आंसू और मुस्कान सबके साझा होने चाहिए तो जीवन में खुशियां आती ही आती हैं। और परिवार और मटके को बनाने वाला वही जानता है जो परिवार को बनाता है। कुम्हार मटके को बनाना जानता है और पिता परिवार को बनाना जानता है। बहुत आभारी हूँ रत्ना बहन, आपने बहुत ही, आप लोगों जैसे जैसे ये कह रहे थे मैं भी धीरे बोलने की कोशिश करूंगी। और बहुत सारी मुस्कुराहट हम समेट कर जा रहे हैं, जिसको देखो वो मुस्कुराहट तो अंदर एक जैसे अमृत सा उतार कर लेके जा रहे हैं। बहुत आभार,
बहुत बहुत शुक्रिया। विषय बहुत विस्तृत है, बैठने को तो हम और भी बैठ सकते हैं पर समय की सीमा है। अभी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, हम एक मिनट साइलेंस के साथ यहीं पर इसको समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति। आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से शामिल होने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।